الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، पिछले चंद दिनों से मशाइख के बताए हुआ इस्लाह का नुस्खा जो है उस पर गुफ्तगू हो रही है कि तकरीबन हर सिलसिले के मशाइख ने नुस्खा बयान किया कि इस्लाह के लिए चार चीजें में कमी करना जरूरी है। किल्लते ताम, किल्लते मनाम, किल्लते कलाम और किल्लते इख्तिलात माल अनाम। यानी खाने पीने में कमी करना, गुफ्तगू में कमी करना, लोगों से मेल जोल में कमी करना और नींद में कमी करना। और पिछली मजालिस में हमने ये भी बताया कि जाहिरन तो ये ऐसा लगता है कि जी इस्लाह वाला जो सालिक है उसको इन चीजों को करना चाहिए, मगर कुरान और हदीस को अगर देखा जाए तो ये हर मुसलमान के लिए ये एक नुस्खा अल्लाह के प्यारे महबूब ने दिया कि इंसान इन उसूलों पे अमल करेगा तो बेहतर और ज्यादा बरकत वाली जिंदगी गुजारेगा, उसके लिए दीन पे आना आसान हो जाएगा। किल्लत ताम पे गुफ्तगू हमने मुकम्मल की और किल्लत कलाम पे गुफ्तगू मुकम्मल की, और पिछले चंद दिनों से गुफ्तगू किल्लत इख्तिलात माल अनाम पे हो रही है कि लोगों से मेल जोल में कम। आम लोग इन चारों चीजों को बड़ा ये समझते हैं कि हलाल चीजें हैं तो क्यों ऐसे मना किया जा रहा है, खाना भी हलाल तो गुफ्तगू भी हलाल, लोगों से मेल जोल भी हराम हलाल और सोना भी हलाल है, इन सारी चीजों में कमी का क्यों कहा जाता है? और इन सब में खास तौर पे इख्तिलात माल अनाम से क्यों रोका जाता है, लोगों से मेल जोल में रोका जाना, बल्कि कई मरतबा लोग ये समझते हैं कि जी ये तो रहबानियत की तरफ मामला जा रहा है कि लोगों से अगर हट कट के रहेंगे तो इसी को तो रहबानियत कहते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तो रहबानियत से मना फरमाया, ला रहबानियत फिल इस्लाम, अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया कि दीन इस्लाम में कोई रहबानियत। तो मशायख ने इसका जवाब दिया कि जी ये रहबानियत नहीं है, ये इख्तिलात, कुछ अरसे का इख्तिलात, थोड़े वक्त का इख्तिलात है कि जिसमें इंसान अल्लाह की याद को हासिल करता है। इन लोगों से मेल जोल रखने में सही तरह से अल्लाह की याद हासिल नहीं होती, वो याद वजूद का हिस्सा नहीं बनती। हट कट के अल्लाह को याद करेंगे तो ये याद जो है वो वजूद का हिस्सा बन जाती है, और हट कट के अल्लाह को याद करने का हुक्म कुरान में भी मौजूद, वज़्कुर इस्मा रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्तीला। जिक्र कर अपने रब का हर चीज से हट कट के, जैसे हटने कटने का हक होता है। वतबत्तल इलैहि तब्तीला, तो इसलिए ये हटना कटना रहबानियत नहीं है, थोड़ी देर के लिए हट कट के अल्लाह को याद करना ताकि दिल में अल्लाह की याद पैवस्त हो जाए, ताकि फिर इंसान दुनिया में अगर आए तो दुनिया की चीजें उसके दिल पर असर अंदाज ना हो। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि कोई शख्स अगर आलिम बनना चाहता है या कोई शख्स अगर बैचलर्स मास्टर्स करना चाहता है तो कुछ वक्त के लिए हर चीज से फारिग हो के और मदरसे में चले जाता है या कॉलेज में चले जाता है, तो किसी खास काम के करने के लिए कुछ वक्त निकाल के उसको काम देना होता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी मदरसे की पढ़ाई पार्ट टाइम भी हो सकती है। इतना मशायख आजकल के जमाने में ये कहते हैं कि जिक्र मामूलात भी पार्ट टाइम कर सकते हैं, ठीक है आपने अपनी जिंदगी के जो काम काज हैं वो नहीं छोड़े, कारोबार नहीं छोड़ा, घर को नहीं छोड़ा, ہر روز تھوڑی دیر کے لیے یہ تبتل اختیار کر لیں. یہ اختلاط ہر روز تھوڑی دیر کے لیے تو کیا جا سکتا ہے, اور ایسا کرنا بھی سنت سے ثابت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لی مع اللہ وقت, میرا اور اللہ کا ایک الگ وقت بھی ہے. تو یہ خانقاہوں کا قیام بھی اسی تبتل اسی اختلاط سے بچنے کے لیے کہ تھوڑا وقت انسان ایسے ماحول میں لگائے جہاں وہ ہر چیز سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد کو حاصل کرے, اور پھر جو ہے وہ دنیا میں آئے تو دنیا کی چیزیں اس پر دل کے دل پہ اثر انداز نہ. کل کی مجلس میں ہم نے ایک اور بات بھی کہی, اور وہ یہ کہ یہ جو اختلاط ہے لوگوں سے ہٹ کٹ کے جو وقت گزارنا ہے, اس سے زیادہ افضل جو ہے وہ اچھی صحبت میں وقت گزارنا ہے. یہ بھی مشائخ کا بتایا ہوا کلیہ ہے کہ بری صحبت سے بہتر یہ کہ انسان اکیلے وقت گزارے, اور اکیلے وقت گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان اچھی صحبت میں وقت گزارے. اب اچھی صحبت تو ہر طرح کی ہے, مسجد میں جائیں گے تو اچھی صحبت مل جائے گی, نیک لوگ مل جائیں گے, کبھی کبھی امام صاحب بھی مل جائیں گے جو عام طور پہ عالم بھی ہوتے, انسان کے دوستوں میں خاندان رشتہ داروں میں نیک لوگ ہوں گے وہ بھی اچھی صحبت ہے, دعوت و تبلیغ میں لگیں گے تو بھی اچھی صحبت ہے, مدارس کا رخ کریں گے تو بھی اچھی صحبت. اچھی صحبت بہت ساری جہتوں میں بہت ساری جگہوں پہ انسان کو مل سکتی, مگر اچھی صحبت میں بہترین صحبت یعنی جس صحبت کا مقصد ہی اصلاح ہے وہ مشائخ کرام کی صحبت ہے, اللہ والوں کی صحبت ہے, ان سے اصلاح کا تعلق قائم کرنا ہے. تو اگر واقعتاً انسان دماغ یہ استعمال کر رہا ہے کہ جی مجھے اچھی صحبت اختیار کرنی ہے, تو اس میں بیسٹ آپشن جو یہ ہے کہ انسان اللہ والوں کی مجالس میں حاضری دے, اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے. حضرت شاہ ابو سعید دہلوی رحمت اللہ علیہ سمت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں, پاک و ہند بر صغیر کے بڑے بزرگ تھے. شاہ ابو سعید کو ان کی دادی نے پالا, اور ان کے دادا بھی اپنے وقت کے بڑے بزرگ تھے. دادی سے بڑی محبت تھی, دادی نے آخر کو پالا, دادی والدہ کی طرح ہی ہو گئی. جب جوانی کو عمر آئی, دادا تو اس دنیا سے جا چکے تھے, بڑے اللہ والے تھے, بڑے بزرگ تھے اپنے وقت کے. دادی نے کہا کہ بیٹا میرا دل چاہتا ہے کہ تو بھی اسی طرح بن جائے جیسے تیرے دادا تھے, تیرے پاس بھی وہ نعمت ہو جو تیرے دادا کے پاس. پوتے نے کیونکہ محبت تھی دادی سے تو کہا کہ اچھا وہ نعمت جو دادا کے پاس تھی وہ کہاں سے ملتی ہے؟ دادی نے کہا وہ اچھی صحبت سے ملتی ہے. اب اچھی صحبت کے تو بہت سارے آپشن تھے, مگر دادی نے کہا کہ یہ اچھی صحبت یہ چیز جو یہ خاص اپنے دادا والی جو اللہ کا قرب جو خاص حاصل کرنا ہے وہ صحبت اللہ والوں کے پاس ملے گی. تو تیرے دادا کی ہی ایک خلیفہ صاحب ہے جن سے بہت لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں, ان کے بارے میں یہ سننے میں آتا ہے, تو وہاں چلے جا ان کے پاس وقت بھی گزار اور جیسے کہیں ویسا کر, تو تجھے یہ نعمت مل جائے. اور کہا کہ پیچھے نہیں ہٹنا. دادی کی محبت کی وجہ سے ان خلیفہ صاحب سے رابطہ کیا, اب کیونکہ ان کے دادا کے خلیفہ صاحب تھے, انہوں نے بھی بڑی محبت سے جواب دیا کہ ضرور تشریف لائیں. جب وہ تشریف لے گئے تو اپنے سارے مریدوں کے ہمراہ शहर से बाहर घोड़े की सवारी लेके खड़े हुए थे। घोड़े पे बैठाया और खुद घोड़े की नुकेल पकड़ के जो है वो खानकाह पे लेके आए। अब नौजवान बड़ा हैरान कि जी मेरे दादा की क्या शान थी कि खलीफा साहब और इतने लोग मुझे रिसीव करने के लिए आए और इतनी प्रोटोकॉल और इतनी मोहब्बत दी जा रही है। और तो और वो जो खलीफा साहब थे उन्होंने अपनी मसनद पे उनको बिठाया और खुद नीचे बैठ गए कि जी हमारे शेख के बेटे हैं, पोते हैं। तो बड़ी मोहब्बत का इजहार उन शेख ने भी किया और सारे उनके मुरीदों ने भी किया और बहुत ज्यादा उनको प्यार मोहब्बत 2-3 दिन तक तो दिया। 2-3 दिन बाद जो है वो शेख जो थे उन्होंने पूछा कि जी यहाँ जो तशरीफ लाए तो कोई मकसद था? तो उन्होंने बताया कि जी मेरी दादी ने मुझे हुक्म दिया था कि जो नेमत दादा के पास है वो लेनी है और वो आपके पास से मिलती है। खुद खलीफा साहब ने देखा कि जी बिल्कुल नौजवान है ना, उसका जहन इस तरफ बना हुआ है ना, उसको पता है कि ये क्या होता है और ऐसे ही आ गया है। तो खलीफा साहब ने तो कहा कि जी वो थोड़ा मुश्किल काम है, वो रहने दे आप। उसको ये तरगीब दी कि ये कोई ऐसा तो या तो जहन बना हुआ हो और या वो जज्बात हो। उसने कहा नहीं, दादी से वादा करके आया हूँ, क्या क्या है, पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा जी उसके लिए तो फिर जो मैं कहूंगा वो करना होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल, दादी ने भी यही कहा था कि जो आप कहेंगे वही करना है। अब खलीफा साहब ने कहा कि भाई अब जहन बना के जो आया है। उनका ठीक है, फिर सबसे पहले तो जरा मसनद से नीचे तशरीफ लाए ना। उनको कहा जी पहले नीचे आए और फिर कहा कि ठीक है। अब खलीफा साहब को भी फिक्र थी कि जी शेख के पोते हैं और ये इस्लाह का पूरा रास्ता चलना भी चाह रहे हैं और दादी का हुक्म ये लेके आए कि वही नेमत चाहिए जो दादा के पास थी। तो उन्होंने उनको कहा कि ठीक है, जो खानकाह के लिए सिक्योरिटी पे जो कुत्ते रखे हुए हैं उनके स्टबल में आपकी ड्यूटी है, उनकी देखभाल आपने कर। अल्लाह, साहबजादा साहब जो है कुत्तों की खिदमत में मामूर, गुस्सा भी बड़ा आता था, तकलीफ बड़ी होती थी। 3-4 दिन से तो ऐसे मुर्गन ग़िज़ाएं मिल रही थी, सुबह शाम हर बंदा बस यही समझता था कि हजरत को एक से एक चीज खिलानी चाहिए। अब खानकाह की दाल रोटी मिली तो होए होए, ये भी तबीयत को नागवार गुजरी। स्टबल में ही सोने का इंतजाम था वो भी नागवार, फिर काम भी क्या करना। और फिर हर बंदा पूछ रहा था जी कैसे हैं, क्या है, सब खैरियत है। अब कोई पूछ भी नहीं रहा कि कौन हो क्या हो। तो बड़ी नफ्स के ऊपर चोटें लगी खूब, मगर इस्लाह के मुख्तलिफ रास्ते हैं और उसमें एक रास्ता ये है, ये जो खिदमत कराना है, खिदमत के जरिए से इंसान के दिल को पस्त करना, उसको झुकाना, ये भी एक टूल है जो इस्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। तो शेख ने ये टूल इस्तेमाल किया और इसका असर होता है। बड़ी मुश्किलों से वक्त गुजर रहा था और शेख ने भी पूछना छोड़ दिया, हालांकि फिक्र बड़ी थी। दुआएं हर रात करते थे कि जी मेरे शेख के पोते हैं, क्या करें, कुछ ना कुछ बदल जाए दिल। काफी अरसा गुजर गया, अब उनको यह था कि शायद तब्दीली कुछ ना कुछ आ गई हो। तो खानकाह पे जो सफाई करने वाली भंगन थी उससे कहा कि जी सारा कचरा लेके जाना और उसके करीब जाके कचरा फेंक देना, ऐसे लगना कि जैसे तुम्हें ठोकर लगी है और सारा कचरा करीब गिर जाए। और फिर मुझे बताना कि उसने आगे से क्या रिएक्शन दिया। भंगन गई और सारा जो कचरा था वो करीब फेंक दिया। और करीब ही था कि सारा कचरा उनके ऊपर गिर जाता, मगर करीब गिरा। गुस्से में आके कहा कि देख के नहीं चलती, अगर ये गंगो होता ना मेरा शहर तो मैं तुझे बताता ये काम करने पे क्या होता है। शैकी खान का है तो इसलिए खामोश हूं। अब हजरत ने पूछा भाई क्या हुआ? हजरत, उसने तो ये कहा कि अगर गंगो होता ना फिर तुझे बताता। शैकी खान का आपने तो कुछ नहीं कह रहा। फरमाया ये तो अभी बड़ा काम बाकी है, इसको ऐसे ही रहने दो, जो चल रहा है उसी तरह से चलने दो। फिकर लगी हुई थी कि जल्दी ये काम हो जाए, कुत्तों के पालने में और उनका ख्याल करने में, इस्तबल साफ करने में, और ये खिदमत जो होती है ना इंसान की सारी नफ्स की हवा निकाल देती है। इसलिए नौजवान जो है वो खिदमत करने से भागते हैं कि जी कहीं हमें अपने बड़ों की खिदमत ना करनी पड़ जाए। हालांकि दुनिया की कामयाबी का राज रूहानी कामयाबी और दुनियावी कामयाबी दोनों का राज खिदमत है। पीछे सीक्रेट जो है ना, सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर कभी ना कभी जो है ना वो तलबा ये सीक्रेट टू सक्सेस जो है ना उसके ऊपर कोई ना कोई लेक्चर जरूर सुनते हैं कि जी कामयाबी का राज क्या है। और कामयाबी का राज मशायख ने ये बताया कि बड़ों की खिदमत करना है। दीनी कामयाबी भी है, दुनियावी कामयाबी। तो शेख ने खिदमत पे लगा दिया था, और बहुत ही तेज तरीन खिदमत थी, बहुत ही तकलीफ दे खिदमत। और ये खिदमत अपना रंग दिखाती जरूर है। कुछ अरसे बाद फिर हजरत को महसूस हुआ कि शायद कुछ तब्दीली आ गई हो। फिर उसी भंगन को कहा कि इसी तरह से जाके कचरा उसके करीब फेंकना, देखना क्या रिएक्शन देता है। उसने उसी तरह जाके ऐसे ही किया कि जैसे ठोकर लगी और फेंक दिया। उसने आगे से रिएक्शन गुस्से से देखा ना, मगर कुछ जुबान से नहीं कहा। हजरत को आगे बताया कि हजरत इस मरतबा जुबान से कुछ कहा तो नहीं, मगर गुस्से से देख रहा था। हजरत फरमाया नहीं, अभी भी बड़ा काम बाकी है। फिर उसने बहुत लंबे अरसे तक छोड़ दिया। बहुत अरसे बाद फिर इस भंगन से कहा कि अब जाके देखो, अब मुझे उम्मीद है कि बेहतरी हो। फरमाया इस मरतबा जो कचरा जो फेंकना है ना, ये इसके ऊपर फेंक देना। अब वो गई और ठोकर लगने का उसने ऐसे एक्शन किया, और सारा कचरा जो था ऊपर, गंद जो भी था कपड़ों में। तो गुस्सा तो दूर की बात, सबसे पहले तो बूढ़ी औरत से कहा कि अम्मा तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? पहले उसको उठाया, फिर सारा कचरा खुद जमा किया और उसकी बाल्टी में डाला कि आ मैं तुझे उठा के देता हूँ, तेरी मदद करता हूँ। अब वालदा जो सफाई वाली खातून थी, उसने जाके हजरत से कहा कि हजरत इस मरतबा तो मामला ही और था। पहले तो उसने मुझे पूछा कि मुझे कहीं चोट तो नहीं लगी, फिर सारा कचरा भी जमा करके दिया और उठा के लेके भी ले गया। मैंने फरमाया बस अब काम हो गया है कि जो मकसद था, जो चीज हासिल करनी थी, वो चीज उसे नसीब हो गई है। उसको बुलाया और इजाजत और खिलाफत दी और अपने घर भेज दिया। अल्लाह ने इतना बड़े शेख बना दिया कि किताबों में लिखा है कि दादा इतने बड़े शेख ना बने जितना ये बड़े शेख बन गए, जितना उनको अल्लाह ने कबूलियत दी और दीन का काम लिया तो दादा से मिले। तो सच्ची बात यह है कि इख्तिलात जो है लोगों से, उसका मकसद अल्लाह की याद है। इख्तिलात से बेहतर यह कि इंसान नेक सोहबत इख्तियार करे, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करे। अल्लाह ताला हमें मशाइख की सोहबत नसीब फरमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله وآخر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا طاهرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا والشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.